जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
नित्यानंद प्रियां प्रेम
नित्यानंद प्रियां प्रेम
भक्ति रत्न प्रदायिनी
श्री
जानवेश्वरी
वंदे
तापत्रय निवारिणी नित्यानंद प्रियां प्रेम
नित्यानंद प्रियां प्रेम
भक्ति रत्न प्रदायिनी
भक्ति रत्न प्रदायिनी
श्री जानवेश्वरी
वंदे
तापत्रय निवारिणी तो भक्ति रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है नरहरि चक्रवर्ती ने उसकी रचना की है तो उसमें ये जानवा माता को प्रणाम मंत्र वो कहते हैं और ये प्रणाम मंत्र बोला था साक्षात चंडी देवी ने जानवा माता के लिए। हाँ, वो प्रणाम मंत्र क्या है कि आई वर्शिप श्री जानवा ईश्वरी, मैं जानवा जो ईश्वरी है जानवा माता है उसकी पूजा करती हूँ। शी इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा, नित्यानंद प्रभु की पत्नी है एंड द गिवर ऑफ द ज्वेल ऑफ प्रेमा भक्ति और प्रेमा भक्ति रूपी रत्न को प्रदान करने वाली है। शी इरेडिकेट्स द थ्री फोल्ड मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस और जो तीन प्रकार के ताप हैं जीव जो कष्ट प्राप्त कर रहा है उनको खत्म करने वाले हैं। तो आज वैसे बहुत शुभ और महत्वपूर्ण दिन है, जानवा माता का आविर्भाव है श्री जानवा देवी के। तो हम प्रयास करेंगे जानवा माता के कुछ विशेष कार्यकलापों को सुनेंगे। सुबह आपने थोड़ा सा सुना था लेकिन और थोड़ा डिटेल में हम सुनेंगे उनके बारे में। तो हम सब जानते हैं कि जो मदर जानवा है वो नित्यानंद प्रभु की प्रिया है, नित्यानंद प्रभु की पत्नी है। तो मदर जानवा के पिता का नाम था सूर्यदास सरखेला और ये छह भाई थे, सूर्यदास सरखेला, दामोदर, जगन्नाथ, गौरीदास पंडित जिनका नाम हम सुनते हैं अंबिका कालना में, जो गौरीदास पंडित हैं जिनके बहुत ही प्रिय विग्रह थे श्री श्री गौरनिता है। और ऐसे गौरनिता थे कि हृदय चैतन्य के हृदय में वो प्रवेश करते हैं और कीर्तन में नाचते हैं। तो सूर्यदास सरकेला के जो भाई थे गौरीदास पंडित, जगन्नाथ, कृष्णदास, नरसिंह चैतन्य और इनके पिता का नाम था कंसारी मिश्र, तो नवदीप डिस्ट्रिक्ट में ही ये लोग निवास करते थे शालग्राम नाम के स्थान में। और फिर अंबिका कालना आते हैं, आप कभी मायापुर जाते हैं तो अंबिका कालना मायापुर से नजदीक है ट्रेन से, और आज भी आप वहां जाएंगे तो जानवा माता के पिता का घर और सब चीज आप देख सकते हैं। और जहां नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ, उनकी कई सारी लीलाएं हुई, उनकी शादी हुई, वो सारे स्थान आज भी हैं। तो ये जो जानवा माता हैं, उनके पिता सूर्यदास सरखेला थे तो उनको जो सरखेला टाइटल, क्योंकि वो गौड़ देश के राजा के यहाँ अकाउंटेंट का सेवा करते थे तो इस कारण से उनको इस सरखेला टाइटल मिला था। और इनकी दो पत्नियां थी, तो एक दो पुत्रियां थी, उन पुत्रियों का नाम क्या था, एक का था जानवा देवी जो बड़े थे और दूसरे थे वसुधा जो छोटे थे। तो कवि कर्णपुर ने जो शिवानंद सेन के पुत्र हैं, शिवानंद सेन को हम जानते हैं कि जो नवदीप से कई सारे वैष्णवों को लेकर जगन्नाथपुरी की यात्रा किया करते थे हर साल, और वो यात्रा चार महीने का होता था। जगन्नाथपुरी में जाके चार महीने रहो और चैतन्य महाप्रभु के संग में कीर्तन और कथा का श्रवण करो, तो ये चार महीने का यात्रा था। तो शिवानंद सेन के पुत्र थे जिनका नाम था कवि कर्णपुर, तो उन्होंने एक बहुत अद्भुत ग्रंथ की रचना की, तो उसका नाम था गौर गणोदेश दीपिका। तो गौर मीन्स गौरांग महाप्रभु, गण मीन्स उनके जो भक्त हैं, उद्देश्य मीन्स उनके जो उद्देशित करते हुए, गौर गणोदेश कि ये गौरांग महाप्रभु के भक्त कृष्ण लीला में कौन कौन है। तो उनके उन्होंने जो वर्णन किया है जानवा माता के बारे में, तो वो कहते हैं कि ये जानवा माता बलराम की जो पत्नी है रेवती है और अनंग मंजरी भी है कृष्ण लीला में, और जो वसुधा है वो वारुणी है। तो राजा रेवत की ये दो कन्याएं थे ना, रेवती और वारुणी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी कई सारी लीलाएं जगन्नाथपुरी में कर रहे थे और हर कोई उनके संग के लिए जगन्नाथपुरी में निवास करना चाह रहा था। तो ये नित्यानंद प्रभु भी जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं कई सारे भक्तों के साथ, और बंगाल जाने की इच्छा नहीं थी। तो फिर महाप्रभु ने देखा कि मैं भी इधर हूँ, नित्यानंद प्रभु भी इधर है, अरे अद्वैत आचार्य भी आते थे चातुर्माश्य के लिए, रथ यात्रा के समय चार चार महीने के लिए रहते थे। तो उन्होंने देखा कि बंगाल में तो कोई प्रचार ही नहीं कर रहा है, तो प्रचार बंद हो रहा है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपने पास बुलाया एकांत में, और चैतन्य चरितामृत में उस बात का वर्णन नहीं आया है। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उन्होंने ऐसी गूढ़ बातें की जो कोई भी नहीं जानता है। तो लेकिन दूसरे ग्रंथ में वर्णन आया है कि क्या गुण वो बातें थी, तो वो कहते हैं तुम्हें जाओ गौड़ देशे कर संसार, क्या करो तुम्हें जाओ गौड़ देशे, आप गौड़ देश में जाओ कर संसार, मतलब शादी करो। इस गुण बात को बोला था चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि अवधूत सन्यासी थे। तो लेकिन अब ये कहते कि शादी करो जाकर, तबे ये सब लोके है बेनिस्तार, और इसीलिए सारे लोगों का वहां उद्धार हो सकता है। पुनः आशीवामी तुम्हारा मंदिर है, और यदि तुम शादी करते हो तो तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हारे घर में मैं आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हार ग्रह हबे अमर अवतारे, और आपके घर में मैं अवतरित हो जाऊंगा। तो ऐसा वर्णन आता है कि किसी को चैतन्य महाप्रभु को देखना है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे सौंदर्य था, उनका शारीरिक रूप कैसे था, तो उनका उनके रूप में ही अवतरित हुए थे वीरचंद्र प्रभु नित्यानंद प्रभु के, कि किसी को देखना कि महाप्रभु कैसे दिखते थे, महाप्रभु का कैसे था ये था रहन सहन, तो वो वीरचंद्र प्रभु थे। तो इसलिए वो कहते कि मैं अवतरित होऊंगा आपके घर में। तो आगे चल के नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र हैं वीरचंद्र के उस फॉर्म में जो शिरोदक्षाई विष्णु है साक्षात गौरांग महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो इतना गुड़ चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को ऑर्डर दिया, और नित्यानंद प्रभु की इच्छा नहीं थी, लेकिन अभी बड़े व्यक्ति का आज्ञा मिला है तो फिर भागना पड़ता है। जैसे उनको आज्ञा मिला था कि जाओ प्रचार करो, तो ये जगाई मदाई के पास गए, तो कहते पागल व्यक्ति ने आज्ञा दिया है जिसके कारण अभी हम फंस गए हैं। जब हरिदास ठाकुर और उनके पीछे जगाई मदाई लगते हैं, तो कहते आपका जो लीडर है वो पागल है। तो उनको ये आज्ञा मिले, तो उस समय कई सारे भक्त नियुक्त किया महाप्रभु ने, कौन कौन आपके साथ जाएगा बंगाल में प्रचार करने के लिए। तो ये आभिराम ठाकुर भी थे उसमें, तो ये पूरा ग्रुप जहां तहां कीर्तन करते हुए जाता है। चैतन्य भागवत में आप देखोगे कि कई महीने तो ये ट्रैवल ही कर रहे थे नवदीप के लिए, उनका कोई भक्त एक जगह खड़ा हो जाता था तो एक हफ्ते के लिए खड़ा ही रहता था, अब कोई बंसी बजाता था, मतलब ये सब नित्यानंद प्रभु के पार्षद ऐसे ऐसे थे, और वो प्रचार भी वैसा ही करते थे। तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि वो पानीहाटी आते हैं, राघव पंडित के घर में आते हैं, वहां उनको बहुत वंडरफुल प्रसाद और ये सब व्यवस्था होती है, तो एक दिन क्या होता है कि इनको सुबह सुबह नींद खुल जाती है नित्यानंद प्रभु की, और अपने एक सेवक को अपने साथ लेते हैं, और वहां एक उनके संगी थे जिनका नाम था उद्धरण दत्त, जो बिजनेसमैन थे। तो इनको लेकर कहते कि चलो हम अंबिका कालना जाते हैं। किसके पास? सूर्यदास सरखेला के पास, जो गौरीदास पंडित के भाई हैं। तो ये निकलते हैं और उद्धरण दत्त को ले जाते हैं अपने साथ, और उद्धरण दत्त को कहते कि तुम अंदर चले जाना, मैं दरवाजे में बाहर खड़ा रहूंगा। तो उद्धरण दत्त जाते हैं अंदर, सूर्यदास सरखेला को कहते कि नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो वो जैसे सुनता है दौड़ते हुए आता है, उनको प्रणाम करता है, बताइए क्या सेवा। तो कहते कि मैं आपके बेटे का हाथ मांगने आया हूँ। तो जैसे ये बोलता है तो वो कहते कि ये तो ठीक है, आप मेरे बेटे का हाथ मांगने आए हैं, तो लेकिन मैं गृहस्थ हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कि मेरे बेटे का विवाह कोई सही व्यक्ति के साथ होना चाहिए। आपके पास ना जॉब है, ना नौकरी है, ना कुछ है, आप तो सन्यासी हो, हाँ तो मेरे बेटे का क्या होगा। और आप, उन्होंने ये वर्ड बोले कि आप तो नारायण हो, क्योंकि हम तो ब्राह्मण है, हमारी जाति मिलती नहीं है, क्योंकि नारायण की जाति तो अलग है, ब्राह्मण अलग अलग कास्ट के हैं। तो कहते ये संभव नहीं है, मैं पुत्री अपनी नहीं दे सकता। तो नित्यानंद प्रभु बिल्कुल शांत होके वहां से निकल पड़ते हैं अकेले, और जाते हैं, निकल जाते हैं, और वैसे ये ब्राह्मण सूर्यदास सरखेला अंदर चले जाते घर में, सारे अपने रिलेटिव्स को बुलाता और कहता कि कल रात मुझे एक सपना आया था, उस सपने में मैं एक व्यक्ति को देखा जो एक अद्भुत रथ के ऊपर अपने कंधे में मुशल और वो हल लेकर जा रहा था, पीत वस्त्र धारण किए थे, कुंडल थे, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं नित्यानंद चरितमृत के आप 12वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये सब वर्णन करता है और वो कहता है कि वो व्यक्ति आया जो बलराम ही था और वो मेरे पुत्री का हाथ मांग रहा था। तो फिर मेरी नींद टूट गई, और जैसे ही ये बात हो रही थी कि नित्यानंद प्रभु आए थे मेरे बेटे का हाथ मांगने के लिए, जानवा का और मैंने मना किया है, तो जानवा अंदर बैठे थे। तो ये जो अपने घर वाले सदस्यों की बात चर्चा चल रही थी, तो जानवा माता जो युवा थे जिन्होंने सुना और जैसे ना किया था, और नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते उनके हृदय में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हुआ उनके लिए, और आंखों से आंसू निकलने लगे, अपने कपड़ों को पोंछने लगे, फिर भी कपड़े गीले होने लगे। और जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, नित्यानंद प्रभु को नहीं देना है हमारी जानवा को, तो अचानक जानवा माता, तो जानवा देवी है, ऐसे करते हुए गिर जाती है, और जैसे गिरती तो सारे लोग देखते कि क्या हो गया जानवा को। तो देखते कि जानवा तो अभी शरीर ही छोड़ने वाली है, तो सब लोग जानवा को बाहर ले आते हैं कपड़े में एक प्रकार से करके, डॉक्टर को बुलाते हैं, तो डॉक्टर देखता है कि उसका शरीर पीला हो गया है, मतलब कुछ क्षणों में मरने ही वाली है, शरीर छोड़ने वाली है। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग अभी फाइनल जो राइट्स है अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तो सारे लोग डर गए, सूर्यदास सरखेला वगैरह, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अभी ये बचने वाली नहीं है, और वास्तव में बिल्कुल ही उसकी आंखें अंदर चली गए थे और सब कुछ बंद हो गया था सारा शरीर, और इन लोगों ने कपड़े में उसको लपेटकर फिर आंगन में रखा था। कुछ लोग रो रहे थे, सारे लोग दुखी थे। तो फिर जो गौरीदास पंडित है, जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के महान शरणागत भक्त थे, पार्षद थे, उन्होंने कहा कि ये एक ही कारण है कि हमने नित्यानंद प्रभु को मना किया है। तो कहते कि आप तुरंत जाओ। तो फिर सूर्यदास सरखेला अपने फैमिली मेंबर्स को और कई भक्तों को लेकर जाते हैं नित्यानंद को ढूंढते हैं। तो नित्यानंद कहां बैठे थे? एक तमरिन ट्री, तमरिन क्या, इमली के नीचे। हम अंबिका कालना गए थे तो जो एक वृक्ष है ना वहां बड़ा, वो वृक्ष के नीचे आप देखोगे चरण है महाप्रभु के, तो वहां बैठे थे नित्यानंद प्रभु। तो ये गए और उनको प्रणाम किया और कहा कि प्लीज आप कृपा करिए और मेरे पुत्री को आप स्वीकार करिए, मैं तैयार हूँ। वो तो कहने लगे मैं तो ग्वाल बाल हूँ, हम तो, मेरे पास कुछ तो काम है ही नहीं, तो मैं कैसे स्वीकार करूँ। कहते कि प्लीज आप मुझे मजाक मत करिए। तो नित्यानंद प्रभु उनके पीठ को थपथपाते हैं, कहते चलो तो जैसे नित्यानंद प्रभु राजी होते हैं तो नित्यानंद प्रभु आते हैं वापस, और नित्यानंद प्रभु आके उस समय हवा बहने लगी, तो उस हवा ने नित्यानंद प्रभु के दिव्य शरीर को स्पर्श किया, और वो स्पर्श उस हवा ने करके जानवा माता के पास वह हवा चली गई। और जानवा माता जो बिल्कुल अभी शरीर त्यागने वाले थे और सारे लक्षण खत्म हो गए थे जीवित रहने के, और सबने छोड़ दिया था कि खत्म ही हो गई है, तो जैसे उन्होंने सांस अंदर ली तो तुरंत उसने आंखें खोल दी मदर जानवा ने, जानवा देवी ने, और देखा कि मैं कहां हूं, सब लोग मेरे इर्द गिर्द भेजे, उसको शर्माई कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। तो जानवा माता वहां से तुरंत उठ जाती है और एकांत में जाकर एक रूम में बैठती है। तो फिर सूर्यदार सरखेला तैयार हो जाते हैं और उनके विवाह का बहुत बड़ा वर्णन आता है नित्यानंद चरितमृत में कि कैसे दो तीन दिन से तो फंक्शन ही चल रहा था, उनके मैरिज सेरेमनी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, मुकुंद दत्त, सारे बड़े बड़े दिग्गज वैष्णव वहां आ गए थे, और बहुत नाचते हुए गाते हुए उनका विवाह होता है। और विवाह के बाद एक दिन ये जो जानवा माता है और नित्यानंद प्रभु ने अपने सारे भक्तों को बुलाया कि अभी विवाह के बाद फिस्ट होना चाहिए सबके लिए, तो सब लोग बैठे थे फिस्ट के लिए, सूर्यदास सरखेला भी थे, जानवा माता भी थे, तो जानवा माता सबको सर्व कर रही थी प्रसाद। तो जानवा माता को असिस्ट करती थी उनकी दूसरी बहन वसुधा, तो जानवा माता सर्व कर रही थी और वसुधा भी प्रसाद सर्व कर रही थी सारे तुमको। तो अचानक क्या हुआ कि वसुधा के हाथ में, एक हाथ में तो चम्मच है और एक हाथ में वो पॉट है जिसमें कुछ सर्व कर रही होंगी, तो जब सर्व कर रहे थे नित्यानंद प्रभु के पास तो देखा कि उनके सर का जो साड़ी का पहलू है घूंघट यहाँ तक होता है, तो वैदिक कल्चर में है कि ये हमेशा सर ढकना होना चाहिए, ढकके होना चाहिए स्त्री का, नीचे नहीं होना चाहिए। तो जैसे वो गिर गया तो नित्यानंद प्रभु देखने लगे कि अभी ये क्या करेगी, ये क्या करती है, ऐसा सोच ही रहे थे वो। तो जैसे नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे तो वसुधा के जो घूंघट गिरता है, तो वसुधा दो हाथ तो बिजी है तो अभी उसको तो उठा नहीं सकती, तुरंत अपने दो हाथ प्रकट करती है और अब ठीक से अपना घूंघट रखती। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसे देखा, ऐसे खींच लिया, बैठो यहाँ, ऐसे राइट साइड में बिठा दिया कि कहा कि हे सूर्यदास सरखेला, आप मुझे डावरी देना चाहते हो, क्या कहते हैं दहेज, तो ये लड़की दहेज में चाहिए तो कहते मैं आपको मना नहीं कर सकता, आप इसको भी रख लो। तो सबसे नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां हो जाती हैं जो साक्षात बलराम है और वारुणी और रेवती, जो बलराम के लीलाओं में जिन्होंने भाग लिया था वृंदावन में, तो तब से ये दो पत्नियां वो स्वीकार करते हैं। और जानवा देवी से तो कोई संतान नहीं होती, लेकिन वसुधा से पहले छह पुत्र होते हैं, लेकिन अभिराम ठाकुर आते हैं हर समय चेक करने के लिए, प्रणाम करके सबका हरि बोल कर देते हैं। तो लेकिन फिर वीरचंद्र गोसाई साक्षात शिरोधकशाही है, विष्णु है, वो प्रकट होते हैं और उसका भी वर्णन आता है बहुत विस्तार से भक्ति रत्नाकर और इन ग्रंथों में। और फिर गंगा मात, गंगा देवी, नित्यानंद प्रभु की जो लड़की हुई उसका नाम था गंगा देवी, तो साक्षात गंगा देवी है जो गंगा बहती है, वो उस गंगा देवी के रूप में प्रकट हुई थी। तो इस प्रकार से वसुधा से ये दो संतान उन्हें मिले। और फिर नित्यानंद प्रभु का जब मैरिज हुआ था तो वो सबसे पहले अपने दोनों उन पत्नियों को लेके वहां चले गए सची माता के पास। सची माता नवदीप में सबको दिखाया, सबका आशीर्वाद लिया, सची माता के घर में गए, वहां बहुत वंडरफुल फिस्ट हो गया, सची माता में उन सब उन दोनों को मिले, खुश रही। और फिर वहां से शांतिपुर गए अद्वैत आचार्य के पास, सीता ठाकुरानी से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, आलिंगन करते हैं, प्रसाद स्वीकार करते हैं, फिर उद्धारक भक्त के घर में जाते हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु तो अपना कोई घर नहीं था, तो आगे रहेंगे कहाँ। तो फिर जैसे करते करते उन्होंने फाइनल किया, खड़दहा नामक जो स्थान है जो कलकत्ता और मायापुर के बिल्कुल सेंटर में आता है, खड़दहा नामक स्थान जो बहुत ही सुंदर है, और हमारे पद्मपुरी पे वो गए हैं उस स्थान में, और आज भी वहाँ काफी लीला तलिया है नित्यानंद प्रभु की, और वो घर भी है गिरा हुआ समथिंग, जहां नित्यानंद प्रभु निवास करते थे वीरचंद्र गोसाई, तो वहां ये दोनों रहने लगे। और इनका उद्देश्य था प्रचार करना, पूरे बंगाल में जानवा देवी नित्यानंद प्रभु प्रचार ही करते रहते थे, हाँ दूसरा और कोई काम नहीं था। तो लेकिन कुछ सालों के बाद नित्यानंद प्रभु जो बंकिम राय विग्रह है जो नित्यानंद प्रभु ने स्थापित किए एक चक्रा में, उसमें एंटर कर जाते, मतलब बांके राय, तो बंकिम राय भी कहा जाता है उनको, तो उनमें वो एंटर करते हैं और अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए थे, अद्वैत आचार्य अप्रकट हो गए थे, कई सारे महाप्रभु की जो नित्य संगी है वो सारे अप्रकट हो गए थे। लेकिन अभी नित्यानंद प्रभु अप्रकट होने के बाद तो सारे गौड़ीय वैष्णव समाज का जो भार है, क्योंकि सबसे सीनियर को एक प्रकार से बचा था जो नित्यानंद प्रभु की शक्ति स्वरूपिणी है, तो वो जानवा देवी थी। तो सारे गौड़ीय समाज का ये लीडर थी, मुखिया थी। तो लेकिन उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी थे, भूगर्भ गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, ये सारे गोस्वामी थे। तो रूप गोस्वामी तो यहाँ के नॉर्थ इंडिया के इंचार्ज थे, लेकिन गौड़िया समाज तो वहां से हिलता था, कहां से, बंगाल से, वहां से कुछ होता था तो सब जगह उसका प्रभाव रहता था, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथपुरी से सबको पुश करते थे। इस प्रकार से ये कार्य चल रहा था। और फिर जानवा माता के ऊपर सारा भार आता है, और जानवा माता आचार्य रानी, उनको वैष्णव आचार्य रानी कहा करते थे, या नित्यानंद स्वरूपिणी, क्योंकि वो आचार्य हो गए थे पूरे गौड़ीय समाज के। तो वो अद्भुत थे जानवा माता का जो कार्यकलाप है, क्योंकि हर एक को ऐसा ही लगता था, हर एक वैष्णव को, कि ये मेरी मदर है जानवा माता, इतना हर एक भक्त का केयर करते थे। तो जानवा माता के ऊपर जब ये सारा बोझ आके पड़ता है गौड़िया वैष्णव समाज की लीडरशिप का, तो चैतन्य महाप्रभु, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में आते हैं, कहते कि गौर पूर्णिमा मनाओ, गौर पूर्णिमा मनाओ, तीनों को सपने में आकर। तो नरोत्तम दास ठाकुर और ये तीनों डिसाइड करते कि खेतुरी में गौर पूर्णिमा मनाया जाएगा, पहला गौर पूर्णिमा। तो फिर ऐसा वर्णन आता है कि जितने भी इन्विटेशन कार्ड थे, और श्रीनिवास आचार्य का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था, तो उन्होंने बहुत सारे इन्विटेशन कार्ड अपने हाथ से लिखे और कई वैष्णवों को लगाया कि बंगाल और ओडिशा के, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था कि जितने भी मेरे पार्षद हैं उन सबको आप बुलाओ इस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में। तो इन्होंने कई वैष्णवों को नियुक्त किया था जो वैष्णव जाते थे, और वो इन्विटेशन कार्ड जो हैंड रिटन इन्होंने लिखा था श्रीनिवास आचार्य ने, वो देते हैं। तो एक वैष्णव पहुंचता है खड़दाह में, जहां आचार्य रानी जो जानवा देवी है वो इन्विटेशन पढ़ती है, अरे ये तो अद्भुत गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है। तो फिर वीरचंद्र गोसाई को कहते कि मैं जाऊंगी उस फेस्टिवल में, और वहां से ही मैं वृंदावन जाऊंगी, अब वृंदावन यात्रा करूंगी, क्योंकि कृष्ण के उन लीला स्थली और ये गोस्वामी को देखने के लिए मेरे हृदय में बहुत लालसा है, क्योंकि महाप्रभु कितना प्रेम करते थे ये जो वृंदावन के गोस्वामियों से। तो ये उनके हृदय में एक रहा था उस बात को। तो जानवा माता ने वीरचंद्र प्रभु को कहा, क्योंकि वीरचंद्र उनके शिष्य भी थे और पुत्र भी थे एक प्रकार से। तो जानवा माता निकलती हैं, तो निकलकर उनके साथ वृंदावन दास ठाकुर निकलते हैं, उनके साथ कौन कौन जाता है इसकी लिस्ट बनाई है, पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन महान आचार्य गए थे। तो वहां से वृंदावन दास ठाकुर निकलते हैं, मीन केतन रामदास, अब चैतन्य चरितमृत के आदि लीला में पढ़ोगे, और फिर वो नवदीप आती है, तो श्रीवास पंडित के दो भाई श्रीनिधि और उनको लेती है अपने साथ। फिर वहां से वो कटवा जाती है, जहां गदाधर दास के जो शिष्य है यदुनंदन उनको लेती है, वहां से फिर जाजेग्राम जाती है, और फिर यहाँ जाती है श्रीपाद श्रीखंड में जाती है, रघुनंदन ठाकुर को लेती है। तो ऐसे महान महान वैष्णव उनके साथ निकले थे, और ये पूरा पार्टी हरिनाम करते हुए खेतुरी जाता है, खेतुरी की ओर जाता है। तो खेतुरी और बीच में एक नदी है पद्मा रिवर। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो भाई हैं संजय दत्त, नहीं संतोष दत्त, हाँ संतोष दत्त ने सारे व्यवस्था अरेंज किए थे कि जानवा देवी के लिए पालकी रखे थे, तो जानवा माता को पालकी में बिठाकर उसमें पार करके नदी में सबको माला पहना के चंदन लगा के, ये उस समय की परंपरा है। आप चैतन्य चरितामृत में देखोगे कि नवदीप से कोई भी वैष्णव जगन्नाथपुरी जाता था तो महाप्रभु पर्सनली जाते थे अठारह नाला ब्रिज तक कई बार, और या तो नरेंद्र सरोवर तक जाते थे, और वहां जाकर हर वैष्णव को महाप्रभु अपने हाथ से माला पहनाते थे और चंदन लगाते थे, मतलब तो इतना आदर करते थे वैष्णव का महाप्रभु। तो उसी प्रकार से महाप्रभु की शिक्षाओं को ये फॉलो कर रहे थे। तो फिर जब ये फेस्टिवल होता है और ये लोग जाते हैं, तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मेरे छह विग्रहों की स्थापना करो, राधाकांत, वल्लभीकांत, मदन मोहन, गौरांग, ऐसे छह विग्रहों की स्थापना करते हैं और फिर उनको भोग लगाया जाता है और फिर आरती होती है। तो आरती होती है तो जानवा देवी जब खड़दहा में थी तो चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जो ये खेतुरी में फेस्टिवल होगा और जब ये नरोत्तम दास कीर्तन करेगा ना तब मैं अवतरित हो जाऊंगा। तो ये केवल जानवा माता को पता था, किसी को पता नहीं था, और जानवा माता ने किसी और के पास बताया नहीं था। तो जैसे ही आरती शुरू होती है, आरती के बाद कीर्तन के लिए सारे वैष्णव बैठ जाते हैं, और फिर अभी टर्न आता है नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे कीर्तनिया थे, प्रेम विलास में वर्णन आता है कि जब वो गाते थे, क्योंकि उनका यूनिक स्टाइल था कीर्तन का, आज तक किसी ने ऐसा कीर्तन नहीं किया, उस स्टाइल को प्रेजेंट नहीं किया जो नरोत्तम दास ठाकुर ने किया था। कहते कि वो ऐसे गाते थे, महाप्रभु अपने शब्दों से कहते हैं कि वो गाएगा तो जो पत्थरी क्या लकड़ी भी पिघल जाएगी, पत्थर और लकड़ी भी पिघल जाएगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर को कहते कि आप कीर्तन करो, तो नरोत्तम दास ठाकुर सारे वैष्णवों के पास जाते हैं, क्योंकि सारे सीनियर वैष्णव आते, सबको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग आज्ञा लेते हैं, कहते अभी कीर्तन करता हूँ। तो वहां वर्णन आया है कि कौन मृदंग बजा रहा था, कौन उनके आसपास करताल बजा रहे थे, कौन कौन वैष्णव आगे बैठे थे, और नरोत्तम दास ठाकुर बैठते हैं और कीर्तन करने लगते हैं। तो उनका कीर्तन इतना मधुर और दिव्य है जिसका वर्णन किया है, और जब वो गाते जा रहे थे लाउडली गा रहे थे, हरे लेकिन लाउडली एंड डीपली कीर्तन होना डीप, मतलब सब कॉन्शियस थे, हाँ, क्योंकि हरे नाम किस लिए उच्चारण करते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आवाज लाउड दिखाने के लिए नहीं, हाँ। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा कीर्तन किया तो उस समय जानवा माता उनके सामने बैठी थी, तो जानवा माता ने अपना जो दृष्टिपात है नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर डाला, हाँ, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था। तो जानवा माता ऐसे देखती जा रही थी नरोत्तम दास ठाकुर को, नरोत्तम दास ठाकुर को ऐसे लगा कि कोई चीज मुझे एम्पावर्ड कर रही है, शक्ति दे रही है, क्योंकि जानवा माता उनको शक्ति संचारित कर रहे थे कि इनके कीर्तन से, हाँ, गौरांग महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ अवतरित होंगे। तो इतना वंडरफुल कीर्तन हो रहा था, सारे वैष्णव गा रहे थे, और जब जानवा माता ने उनके ऊपर दृष्टिपात किया और काफी समय तक ऐसे देखती रही, हाँ, गुस्से में नहीं, आनंद से देख रहे थे, प्लेजिंग आनंद, तो देखा तो इनका नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे गाते गाते, और सारे वैष्णव गा रहे थे, कोई रो रहा था। तो उसी समय अचानक क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ प्रकट हो गए और हर कोई नाचने लगा। वर्णन आता है स्वरूप दामोदर, हाँ, और कई सारे वैष्णवगण, सार्वभौम भट्टाचार्य जो, और कई सारे ऐसे वैष्णव प्रकट हो गए, अद्वैत आचार्य वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग, नित्यानंद प्रभु भी प्रकट हो गए थे, क्योंकि उस समय तो कोई नहीं था, तो ये सब लोग प्रकट हो गए थे और हर कोई नाच रहा था। तो नित्यानंद प्रभु के साथ नरोत्तम दास ठाकुर नाच रहे थे, महाप्रभु के दास श्रीनिवास पंडित नाच रहे थे, तो ऐसा टोली बनाते ऐसे नाच रहे थे हर कोई। तो उस समय जानवा माता एक चीज को देख रही थी, और विशेष रूप से वो अपने पति को देख रहे थे, नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक विरह नित्यानंद प्रभु से उनको महसूस हो रहा था। नित्यानंद प्रभु आप प्रकट हो गए थे और अभी पहली बार नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए थे, तो नित्यानंद प्रभु और ये सब लोग नाचते हैं। और वर्णन आता है कि कुछ घंटों तक ये सब लोग थे, नाचते जा रहे थे, गाते जा रहे थे, और अचानक क्योंकि इतना आनंद वातावरण था, अचानक जैसे लाइट चली जाती है वैसे सारे जो प्रकट हुए जो वैष्णव है वो अप्रकट हो जाते हैं। और जैसे अप्रकट होते हैं तो हर कोई रोने लगता है, विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य, हाँ कि हमने कुछ चीज खो दिए हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कोथा गेला गोरा नटराज, कहाँ चले गए, अभी तो थे। हाँ, तो ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर क्रंदन करने लगते हैं वो वैष्णव। फिर जो जानवा देवी है इन सारे वैष्णवों के दुखों को देखती है तो वो कहते हैं कि नहीं अभी इनको सुखी करना पड़ेगा। तो जानवा माता तुरंत ऑर्डर देती है कि अभी हम, क्योंकि होली का दिन है, गौर पूर्णिमा के दिन क्या होता है, होली होती है ना, फाल्गुन पूर्णिमा, तो जानवा माता कहती कि जाओ अभी कलर ले जाओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने सारे कलर अरेंज किए थे, तो रेड कलर लाते हैं और जानवा माता अपने हाथ में लेती है और अल्टर में जाती है। और मदन मोहन, लक्ष्मीकांत, वल्लभीकांत, गौरांग, ये जो छह विग्रहों की स्थापना हुए थे उनको अर्पण करते हैं उनको। और फिर आती है बाहर और भक्तों को, हर कोई उनके हाथ से लेता है कलर, और पूरा वातावरण ही चेंज हो गया था। वो सारे दुखी हो गए थे लेकिन हर वैष्णव अभी जो कलर डालते जा रहा था और हरिनाम का गान करते जा रहा था। जो जानवा देवी है वो सबको सुख प्रदान करती हैं। तो वो जो दुख उनके बीच में आया था तो हर वैष्णव इस प्रकार से भूल गया था। इस प्रकार से जानवा माता ने, क्योंकि जानवा माता को उस फेस्टिवल में सबसे मेन स्थान प्रदान किया था, और जानवा माता ऐसे नहीं थी कि केवल वो रिस्पेक्ट ही लेते जा रहे थे, उनका जो उसके जो था है। तो जैसे क्योंकि गौर पूर्णिमा का फास्टिंग होता है, नेक्स्ट डे जानवा माता सबसे पहले उठी। जानवा माता ने सारे वैष्णवों के लिए कुकिंग किया। जानवा माता को एक चीज बहुत अच्छी लगती थी, वैष्णवों के लिए कुकिंग करना और उनको सर्व करना। तो जानवा माता ने बहुत सारे व्यंजन बनाए, हाँ, और ड्यूटीज को ऑफर किए और वैष्णवों को बिठाया, सबको पहले खिलाया और फिर ये चार लोगों को बिठाया। हाँ, एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु और रामचंद्र कविराज। क्योंकि रामचंद्र कविराज ये नरोत्तम दास ठाकुर को छोड़ते नहीं थे, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, ये दोनों जोड़ी हमेशा रहते थे, बल्कि उनके मित्र के ही शिष्य थे। रामचंद्र कविराज किसके शिष्य थे? श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, लेकिन वो कहते कि इनका संग मुझे चाहिए, हाँ, इनके संग के बिना नहीं। तो इस प्रकार से ये चारों को बिठाती हैं, तो ठाकुरानी है जानवा माता, और उनको हर प्रकार से पूरा सर्व करती हैं। तो वर्णन आता है कि जानवा माता के हाथ से बना हुआ प्रसाद को ग्रहण करना कितना भाग्यवान। और वहां महाप्रभु के पार्षद तो बड़े वैरागी हैं और वो दुबले पतले हैं और हरिनाम लेते रहते हैं, तो वो ज्यादा खाने पीने के चक्कर में नहीं होते। लेकिन उस दिन ऐसे हुआ था, वर्णन करते हैं उस फेस्टिवल का, कि उन वैष्णवों ने लिमिट ही छोड़ दिया। कहते कि क्या पता जानवा माता के हाथ से खाने का फिर से हमें मिलेगा या नहीं। तो वैष्णव आपस में बातें करते जा रहे और खाते जा रहे, जानवा माता डालते जा रही है। तो उन्होंने पूरी तरह से अखंड भोजन कंठ भर के यहाँ तक किया। इस प्रकार से जानवा माता उस फेस्टिवल में सर्व करती है और फिर वो जाने लगती है। हाँ, उस फेस्टिवल में सारे वैष्णव गए और इस फेस्टिवल का वर्णन आप नरोत्तम विलास में पढ़ सकते हो, पूरा विस्तार से दिया है, किसके लिए कौन सा रूम दिया गया था, सर्वेंट्स दिए गए थे, उनका केयर हो रहा था, उन सबको फेस्टिवल के लिए बुलाए जाते थे, शेड्यूल था, ये सब का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु के इस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का वर्णन कई ग्रंथों में किया है। तो जो जानवा माता है वो सबको विदा देती है और वो निकलने लगती है, कहती कि मुझे अभी जाना है। कहाँ जाना है? वृंदावन। तो अपने साथ कुछ भक्तों को लेती है, क्योंकि वो दीक्षा देती थी और गुरु थी, महान गुरु थी, हमारे संप्रदाय के। तो जानवा माता अपने कुछ भक्तों के साथ निकलती है वृंदावन की ओर। तो भक्ति रत्नाकर में इस वृंदावन यात्रा का वर्णन आता है कि जानवा माता जब जा रहे थे तो एक गांव में वो रुकती है और रास्ते में अपना टेंट डाल के रुक जाती थी अपने भक्तों के साथ। तो एक गांव के पास से रुकी, बिल्कुल गांव के नजदीक ही। तो गांव में उस समय बहुत ज्यादा पाषंड थे, वैष्णव से दोष करने वाले लोग थे। और लेकिन कुछ ऐसे महाभागवत वैष्णव उस गांव में थे, जब जानवा माता को उन्होंने देखा तो सारे वैष्णव दौड़ते हुए आए और जानवा माता की शरण ग्रहण की, उनसे गाइडेंस लिया भक्ति के लिए, उनसे शिक्षा लिया। माता ने कई लोगों को दीक्षित कर दिया और उनको हरिनाम प्रदान किया। तो कुछ ऐसे द्वेषी लोग थे जो ईर्ष्या करने वाले थे, स्मार्त ब्राह्मण, वो कहने लगे ये ब्राह्मण ही एक स्त्री आ गई है जो गुरु बन गई है, हाँ इसने तो ट्रेडिशन ही खत्म कर दिया, हाँ कुछ पॉल्यूट कर दिया। तो इस प्रकार से उतने द्वेषी थे और वो सब चंडी के भक्त थे। कहते हैं कि ये लोग देवताओं को प्रणाम करने के बजाय उस स्त्री के पास जाते और उसको प्रणाम करते हैं। तो वो कहीं दूसरा कहता है कि एक दिन आएगा चंडी की कृपा होगी तो वो उसके पास जाना बंद हो जाएंगे और चंडी की सेवा में लगेंगे। तो एक दिन ये सारे जाते हैं उस देवी के पास, चंडी देवी के पास। चंडी के महान भक्त थे ये लोग। ये पूरा ग्रुप स्मार्ट ब्राह्मणों का जाते और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शक्ति दो कि हम इस जो ये जानवा देवी है इसको आज हम मार डालेंगे, जीवित मार डालेंगे, खत्म करेंगे उसको, वो नहीं चाहिए अभी हमें, क्योंकि इतना द्वेष इतनी ईर्ष्या। तो फिर जैसे ही प्रार्थना करते हैं बहुत खुश होकर घर जाते, वापस घर जाते और सब एक ही जगह सोते हैं और एक ही साथ चंडी देवी उनके सपने में आती है। और सपने में आती है और उनको अद्भुत सपना आया था कि चंडी देवी ने अपना तलवार अपने हाथ में लिया हुआ था, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी, वोट फटफट कर रहे थे। तो ऐसा जो अद्भुत दृश्य देखा तो ये जो सो रहे थे सपने में कि ये क्या हो रहा है, तो उस समय उन्होंने कहा ये जो जानवा देवी है ये मुझे सबसे प्रिय है और इनकी आज्ञा से ही तो मैं सेवा इस भौतिक जगत में जो नित्यानंद प्रभु के प्रिया है। तो इस प्रकार से वो बताने लगे और यदि उससे ईर्ष्या करोगे, उसको मारने का सोचोगे तो अभी आप लोग जीवित नहीं रहोगे। यदि आपने आपको जीवित रखना चाहते हो तो कल सुबह उठते ही जानवा माता के पास जाओ, उनके चरणों में गिरो और उनसे हरि नाम स्वीकार करो। तो ये सब लोग सुबह एक ही साथ उठते और भागते हैं, हाँ जाके जानवा माता अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे उनके कई शिष्यों के साथ। तो ये जाते और उनके चरणों में गिरते हैं कि हमें क्षमा करो, हमें हरि नाम प्रदान करो। तो जानवा माता उन सबको दीक्षा देती है, अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और जो हमने शुरुआत में जिस प्रणाम मंत्र का उच्चारण किया था तो वो चंडी देवी ने ही बोला था वो प्रणाम मंत्र, फिर से आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। नित्यानंदम प्रियम
प्रेम
भक्ति रत्न प्रदायनी
श्री
जानवेश्वरी
वंदे
तापत्रय निवारिणी। तो वो सारे जाते हैं जानवा माता का शरण ग्रहण करते हैं और जानवा माता अपना जो प्रवास है वो वृंदावन की ओर जारी रखते हैं। तो वर्णन आता है कि जानवा माता काशी गए थे जहाँ विश्वेश्वर का दर्शन किया, बनारस आए, बनारस की काशी है, इलाहाबाद आए थे जहाँ लॉर्ड चैतन्य ने बिंदु माधव का दर्शन किया था। तो उसी रूट को फॉलो करते हुए जो जानवा देवी है वृंदावन आती है और जानवा माता जैसी वृंदावन आने से पहले ही एक स्थान में एक नदी के किनारे वो रुकती है, क्योंकि कोई गांव आसपास नहीं था। तो उस स्थान में कुछ मुस्लिम जो चोर घूमते रहते थे जंगलों में, कोई भी व्यक्ति तीर्थ यात्री या जो ट्रैवलर घूमता था, ट्रैवलिंग करता था, उसको पकड़ते थे, धन लेते थे और उसको मार डालते थे। तो देखा कि ये जो स्त्री है ये जानवा, ये इसके पास बहुत लोग हैं और ऐसे लग रहा था कि उनके पास बहुत धन है, कुछ सामान वगैरह था। तो इस एक दिन उन्होंने जानवा माता और उनके जो भक्तगण थे नदी के किनारे ही रुके छोटा सा टेंट बनाकर, तो इनके कुछ सूत्रधार थे चोरों के, और जो मुस्लिम चोर का एक ग्रुप था, तो इन्होंने सोचा कि इनको हम मार डालेंगे और सारे धन हम इनसे ले लेंगे, क्योंकि इनके पास रत्न है, बहुमूल्य धन है, रत्न है और आभूषण है। तो इन्होंने जैसे ही सोचा, तो एक दिन शाम को जानवा माता अपना प्रवचन दे रहे थे, और कीर्तन के बाद उन्होंने सोचा कि आज हम जल्दी सो जाते हैं। तो जानवा माता फ्लोर में सोया करती थी हर समय, तो सारे लोग सो जाते हैं उस टेंट में, और ये लोग बिल्कुल नजदीक थे, सामने उनका टेंट दिखता था और इधर छोटी सी झाड़ियां थी, एक पेड़ के पीछे एक ग्रुप था पूरा। तो उनके लीडर ने कहा कि अपने अपने तलवारें और जो भी अपना हथियार है वो ले लो, अभी हम आक्रमण करेंगे। तो जैसे रात्र हो गई और मध्य रात्रि हो गई, तो ये सब लोग निकले तो इन्होंने कहा अभी दौड़ते हैं, तो इतना तेजी से दौड़ने लगे। लेकिन सुबह हो गई और सूरज उग गया, देखते कि हम एक ही जगह में दौड़ रहे हैं। और वो लीडर जैसे ही अनुभव करता है, उसका हृदय धक धक करने लगता है, भय आ जाता है उसके हृदय में कि अरे आज दौड़ रहे थे और सुबह देखा कि एक ही जगह है, तो सोचता है कि ये जो जानवा माता के प्रति जो हमारी ये कुभावना है, ये कोई सामान्य से नहीं है, ये कोई महान भगवत भक्त हो सकती है। तो जो मुखिया फूट डर जाता है और वो कहता है कि ये शस्त्र वगैरह यहाँ डालो, और फिर ये बिल्कुल विनम्र होकर जाते हैं जानवा माता के पास और वो बताते हैं कि हमने क्या भावना थी, हम क्या चाहते थे और हमारे साथ रात को क्या घटना बीती है। तो जानवा माता और सारे वो भक्त देखकर हंसते हैं, और फिर जानवा माता उन सबको दीक्षा देती है। तो जो अभी पार्टी चोरों की थी वो पार्टी अभी संकीर्तन पार्टी हो गई थी। और वो संकीर्तन पार्टी वर्णन आता है कि जहां तहां ट्रैवल करते थे और जहां तहां जाकर वो हरिनाम का प्रचार करते थे। तो ऐसे जानवा माता इतनी उदार थे कि बहुत सरलता से उनको वो किसी को भी भक्ति प्रदान करते थे, क्योंकि नित्यानंद स्वरूपिणी गौरांग महाप्रभु से ज्यादा दयालु नित्यानंद प्रभु है। हाँ, वो प्रणाम करेंगे आपको, दंडवत करेंगे, चरण पकड़ेंगे, कहेंगे कि गौरांग का नाम लो, भक्ति करो, ऐसे थे, ऐसा कोई है नहीं। हाँ, इस प्रकार से फिर जानवा माता पहुंचती है वृंदावन, मथुरा पहुंचती है और विश्राम घाट में स्नान करती है, और वहां से जानवा माता वहां रूप गोस्वामी के वहां जाती है। तो रूप गोस्वामी के पास जाती है तो उसका वर्णन आता है कि कतश जय दिवस जय उत्तरिला वृंदावने प्रेमे गर गर मन किछु नहीं जाने। तो वृंदावन में उतरते उनका मन प्रसन्न में मैड हो गया था। कतश तदारा बहे नयन बहिया सिरूप गोसाई कुंजे उत्तरिला गया। तो वो रो रहे थे और रूप गोस्वामी की कुटिया में गई। तो रूप गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं उनको देखकर, और रूप गोस्वामी उनको लेकर सारे वैष्णवों के पास ले जाते हैं, और सारे वैष्णवों के पास रूप गोस्वामी ले जाते हैं और सारे स्थानों को दिखाते हैं पर्सनली रूप गोस्वामी इनको, और सब जगह भ्रमण करके एक दिन जो जानवा माता है वो बैठती है रूप गोस्वामी के साथ उनके कुटिया में, और रूप गोस्वामी को कहती है कि मैं ये जो वैष्णव है ना, ये सनातन गोस्वामी है, लोकनाथ गोस्वामी, इनके बारे में सुनना चाहती हूँ। वो सब वैष्णव वहां थे लेकिन अपने अपने कुटिया में थे, लेकिन मैं इन सबका ग्लोरी सुनना चाहती हूँ कि ये वैष्णव कैसे हैं अद्भुत। हाँ, तो रूप गोस्वामी टाइम नहीं है लेकिन जो वर्णन यहाँ किया है प्यारों में रूप गोस्वामी के मुख से, और एक एक भक्त का जो गुणगान किया है वो सुनने योग्य है। मैं कुछ पढ़ता हूँ। एक दिन ठाकुरानी कुंजे ते बसिया रूप गोसाई के किछु कहे न बसाया। तो एक दिन ठाकुरानी रूप गोस्वामी के कुटिया में बस बैठ गए और रूप गोस्वामी से पूछती है, सनातन लोकनाथ गोपाल भट्ट नाम हमारे सुनाह कार के गुण आख्यान। कहते सनातन लोकनाथ गोपाल भट्ट इन सब के गुणों के बारे में सुनाओ। किसको बोलती है? रूप गोस्वामी को। देखो, भक्तों के गुणों को सुनना चाहती है, दोषों को सुनना चाहते हैं। और वो कहती है हमारे सुना कारक के गुण आख्यान गोसाई कहे न आमी आज हाँ गोसाई कहे न आमी आचिये बसिया कहते लागिला सुना ईशत हसिया। तो वो बैठते हैं और रूप गोस्वामी हंसते हुए उनको कहने लगते हैं सनातन मोरा ज्येष्ठ मोरा प्रभु साम। सनातन तो मेरे बड़े हैं और मेरे प्रभु के समान है, क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को गुरु का हाँ वो दर्जा देते थे और उनके गुरु ही थे एक प्रकार से। तारा गुण की कहे बा मुए जीवाधम, उनके गुणों की क्या चर्चा करना, हाँ वो तो इतने महान है कि मैं इतना अधम हूँ, मेरे पास वो योग्यता नहीं कि उनके गुणों को मैं वर्णन कर सकूं। यहाँ स्थाने मोर शिक्षा कृपा करे नाती लोकनाथ अति विरक्त महाशुद्ध मती, कि यहाँ वृंदावन में तो सनातन गोस्वामी ने मुझे शिक्षा दी है और मेरे ऊपर कृपा की है जिनके कारण मैं वृंदावन में रह रहा हूँ। और कहते लोकनाथ अति विरक्त शुद्ध महामती, और लोकनाथ गोस्वामी के बारे में क्या कहा जाए कि जो शुद्ध भक्त है जिनकी मति हर समय कृष्ण में लगी रहती है और विरक्त है। कठोर वैराग्य जारा द्वितीय संगहीन चैतन्य प्रिया ते पंडित प्रवीण, कहते हैं कि वो उनका वैराग्य कठोर है और द्वितीय संगहीन, किसी और के संग नहीं करते क्योंकि कृष्ण कथा के अलावा कोई और चर्चा करेगा। और कहते कि चैतन्य प्रिया अति पंडित प्रवीण, चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय है और लोकनाथ गोस्वामी बहुत पंडित है। यही गोप देख सर्व गुणवान, देखो देखो गोपाल भट्ट को देखो क्या है, सारे गुणवान है, सारे गुण गोपाल भट्ट गोस्वामी में भरे हुए हैं। मोरा अति बंधु है ना गौर जार प्राण, और मेरे सबसे करीब के बंधु है गोपाल भट्ट गोस्वामी और गौरांग महाप्रभु जिनके प्राण है। इस प्रकार से रूप गोस्वामी इन वैष्णव का गुणगान करते हैं। भूगर्भ आचार्य यहाँ नाहि सुनत गुणतम गदाधर पंडित शिष्य प्रियतम, गदाधर पंडित के प्रिय शिष्य हैं भूगर्भ गोस्वामी और इनके गुणों का तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। सबे मेली दया करें प्रभु संबंध तिहो प्रीति करें मोरा गुनेर नाही गंदा, तो कहते महाप्रभु के कृपा इन सबके ऊपर है और इनका महाप्रभु से संबंध है और मुझ में तो कोई गुण नहीं है। और वो कहते हैं ठाकुरानी के बाद निज परिचय, अभी ठाकुरानी कहते आप तो अपने सबके बारे में बोला, अभी अपने बारे में तो बताओ है रूप गोस्वामी। तो कहते हैं जगत हमारा सम अधम के है, कहते इस जगत में मुझसे ज्यादा अधम कौन है, हाँ रूप गोस्वामी कहते हैं ठाकुरानी कहे सुने वचन तहार चैतन्य शक्ति तुम्हें जाने ल निर्धार। तो ठाकुरानी को तो पता था कि महाप्रभु की शक्ति तो आप में संचारित है, श्री चैतन्य मनोभीष्ट महाप्रभु के मनोभीष्ट को तो आप जानते हैं। इस प्रकार से जो ठाकुरानी वो तो जानते थे तुम्हारे तो की बारे मोरा यहाँ आगमन अनुषंगी नयन देखी नु वृंदावन, कहता मन तो सेकेंडरी है देखना लेकिन आपको देखने के लिए मेरा आगमन यहाँ हुआ है। जानवा माता कहती है रूप गोस्वामी को केवलीला ग्रंथ तुम्हें करेला वर्णन सुनाई या तहा सुखी कर मोर मन, और मैंने सुना है कि आपने कृष्ण लीला के उत्तम उत्तम ग्रंथों की रचना की है और आप मुझे सुनाकर धन्य करो। रूप गोस्वामी को जानवा माता कहती है और कौन कौन से ग्रंथ सुनाओ, तो वो कहती है भक्ति रसामृत सिंधु विदग्ध माधव दान के लिए कौमुदियार ललित माधव, वो कहते चार ग्रंथों को तो मैं सुनना चाहती हूँ। सबसे पहले तो भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु कहती है विदग्ध माधव ललित माधव दान के लिए कौमुदी। इस प्रकार से वो कहती है उनको रूप गोस्वामी बहुत ये हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि इन ग्रंथों को मैं सुनाऊंगा लेकिन कल सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है हमारा टाइम भी हो गया है क्योंकि कल हम और एक घंटा इनका कर सकते हैं। जानवा देवी के नित्यानंद राम के गौरंग महाप्रभु के प्रभुपाद के गौर प्रेमानंदे। Yeah.